ओम शांति। पवित्रता के सागर, बेहद बाप के द्वारा निकली हुई अनेकानेक छोटी मोटी ज्ञान नदियां भी सबको कह सकते हैं, क्योंकि बाबा ने आकर के सब बच्चों को ऐसा ज्ञान अमृत पिलाया जिस आधार से हम बच्चों के जीवन को भोगी से योगी बना दिया। अगर हरेक कोई अपने इस ब्रह्मांड जीवन के पहले दिन को याद करे, जिस समय पहली बारी बाबा के घर में गए या बाबा के किसी बच्चे के साथ मिले और जब हमें आत्मा का पहला लेसन मिला, उस लेसन को सुनने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ, ये तो हर ब्राह्मण बच्चा बहुत अच्छी तरह से जानता है और अनुभव भी करता है कि जिस समय आत्म स्वरूप की हमें स्मृति आई कि मैं देह नहीं परंतु देह से अलग एक अविनाशी और चेतन आत्मा हूं, इस स्मृति से ही हमारी दृष्टि बदली हो गई, दृष्टि से सृष्टि भी बदली हो गई। घर में से जब समझने के लिए आए उस समय की स्थिति और जब इस लेसन को समझ करके घर में गए उस समय की स्थिति में रात दिन का फर्क आ गया। वही प्रवृत्ति एकदम डिफरेंट लगने लगी, वही घर एकदम न्यारा लगने लगा, वही संबंध जो दुख देने वाले समझते थे उनकी तरफ देखने की दृष्टि और वृत्ति चेंज हो गई। तो बाबा ने आकर के सबसे पहले हम बच्चों को हमारा जीवन जो योगी जीवन बनाया, जिसके लिए हम बच्चों को स्व का, स्व के पिता का, स्व के घर का, स्वधर्म का सारा इतना अथाह ज्ञान दिया और जीवन को एकदम न्यारा और प्यारा बना दिया। जैसा जैसा ज्ञान की गहराई में जाते गए, जैसा जैसा बाबा के द्वारा रोज ज्ञान अमृत पीते गए, जीवन में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। बाबा ने आके सबसे पहले हम बच्चों को ये बताया, हम लोग भक्ति मार्ग में ऐसा समझते थे कि बंदा मना गंदा, बंदा मना पापी, बंदा मना भूले करने वाला, मैं पापी हूं, कपटी हूं, नीच हूं, सारा समय जाकर के मंदिरों में, गुरुद्वारों में महात्माओं के आगे अपनी स्थिति का वर्णन करते थे, ऐसा समझते थे कि हम जैसा कि भगवान से लाइसेंस लेके आया ये सब कुछ करने के लिए, इसीलिए बेधड़क होकर के चलते रहते। परंतु जब बाबा ने आके हम बच्चों को ये ज्ञान दिया, ये समझ दी कि तुम जो आत्माएं हो, तुम शुद्ध आत्माएं हो, तुम पवित्र आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम ऊंची आत्माएं हो, इसकी स्मृति आने के बाद पहले जो हमारी समझ थी और जिस समझ के आधार पर हमारे विचार और कर्म थे वो सब परिवर्तित हो गए। बाबा ने हमारी सोच को बदलने के लिए ये भी बताया कि तुम जो भी ब्राह्मण आत्माएं, इनका जन्म कैसे होता, क्योंकि आप अगर सारे सृष्टि चक्र को देखेंगे तो सत्युग और त्रेता युग की जो पैदाइश है वो योग बल की पैदाइश है। द्वापर और कलयुग में अगर देखेंगे तो वो भोग बल की पैदाइश है, परंतु इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्राह्मण ये पवित्रता की पैदाइश, ऐसा जन्म संगम युग पर ही हम ले सकते हैं और कभी नहीं हो सकता। तो जिनके जन्म की विधि ही पवित्र है उनका स्वधर्म पवित्र है, हम आत्माएं पवित्र स्वरूप, हमारा पिता पवित्रता का सागर है, हमारा घर पवित्र धाम परम धाम है। और हम जिस दुनिया में जाते हैं वो भी पवित्र दुनिया है, हमारा कर्तव्य भी पवित्र। इस पवित्रता को धारण करने के लिए बाबा ने हमें ये भी स्मृति दिलाई कि मीठे बच्चे तुम बाप के मददगार हो। किसके लिए मददगार हो? धर्म और राज की स्थापना अर्थ तुम बच्चे मददगार। अगर हम पीछे की हिस्ट्री देखते हैं कि जो भी धर्म स्थापक आए उन धर्म स्थापकों ने पवित्रता के बल से धर्म की स्थापना की। पवित्रता और सहनशीलता, इन दो गुण के बगैर कोई धर्म की स्थापना कर नहीं सकता है। चाहे कोई छोटा मोटा धर्म स्थापन करने के लिए कलयुग के अंत में भी आवे तो भी उसको ये धारणाएं जीवन में धारण करनी पड़े। तो बाबा ने हमें बताया कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि वाला जो पवित्र धर्म है उसको स्थापन करने के लिए बाप के मददगार हो। धर्म स्थापनार्थ, धर्म का मतलब ही है धारणाएं, धर्म का मतलब ही है पवित्रता। तो जब बाबा ने हमें हमारे कर्तव्य की स्मृति दिलाई, उस स्मृति के आधार पर ही हमारे अंदर समृद्धि आ गई, शक्ति आ गई, जिस शक्ति से बाबा ने हम बच्चों को उसी शरीर में रह के जिसमें थे उस तन में रह करके भी हमारे तन और मन को पवित्र बनाए। क्योंकि हमारे विचारों में परिवर्तन हो गया। जब दृष्टि कोण में परिवर्तन हो जाता है तो एक्टिविटीज में भी परिवर्तन हो जाता है, वाणी में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसा आप देखेंगे, पहले शुरू शुरू में लोगों को चंद्रमा क्या है इसका कोई ज्ञान नहीं था, तो कभी भी किसी की जब महिमा करते थे सुंदरता की तो उसकी भेंट चंद्रमा से करते थे। परंतु जब साइंटिस्ट चंद्रमा में गए और उधर से जाके सब फोटो लाए कि चंद्रमा की क्या हालत है, वहाँ किस तरह से वहाँ पर खड्डे हैं, कैसे पत्थर हैं, क्या हाल है वहाँ का, वो फोटो देखने के बाद कवियों ने भी अपनी कविताएं चेंज कर दी। तो दृष्टिकोण से आप एक कृति परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा दृष्टिकोण जो देह का था, देह को देखने का था, और सारा समय हमारा जो देहधारियों को देख के उसका ही वर्णन करना, उसको ही सजाना, उसके ही भान में रहना, उसके बारे में ही सोचना जो चलता था, वो सारा परिवर्तित हो गया। इसीलिए हमने सबसे पहले बड़ा त्याग किया बाबा का बनने से। हम औरों को भी समझाते हैं कि हमने तन मन और धन ईश्वर अर्पण किया। मन और धन अर्पण के करने के पहले फर्स्ट नंबर तन अर्पण किया। तन अर्पण अर्थात देह अभिमान अर्पण। तन को स्वार किया, मांग किया, पकड़ के उसको यज्ञ कुंड में थोड़ा ही डाल। बाबा ने हम बच्चों को ये समझ दी कि सबसे बड़े से बड़ा जो आत्मा में रोग पैदा करने वाला है वो है देह अभिमान। अगर इन सब बीमारियों से छूटना है, अपने जीवन को भोगी से योगी बनाना है, तो देह दान छूटे ग्रहण। पहले पहले दान दे उस देह अभिमान का, पीछे ग्रहण छूट सकता है, नहीं तो आधा कल्प का लगा हुआ ग्रहण छूटना कोई छोटी सी बात। और बाबा ने ये समझ देने के बाद जब देह से डिटैच होना हम बच्चों को सिखा दिया, और सिर्फ मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं, मेरे सामने वाला भी आत्मा है। शुरू शुरू में बाबा ने बैठ करके घर में कापियां की कापियां भर दी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, घर के जितने बंदे थे सबके आत्माएं 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 करके इतना आत्म अभिमान पक्का कर दिया, जो बाबा को देखने के बाद आत्मा ही दिखाई पड़ती थी, शरीर नहीं दिखाई पड़ती। इतना अभ्यास बाबा ने किया। और जिस अभ्यास जो अभ्यास हम बच्चों को भी करना सिखाया कि तुम अपनी आत्मिक स्थिति में रह करके औरों को भी आत्मा देखो, भक्ति मार्ग में सन्यासियों ने स्त्री को नागण कहा, बाबा ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी समझ दिया। वो स्त्री को नागण इसीलिए कहते हैं, नाग में क्या होता है, विष होता है ना, तो ये शरीर विष से पैदा हुआ है, विकार विष है ना, ये विष से पैदा हुआ जो शरीर है इसको देखने के बाद सामने वाले को जहर जरूर चढ़ेगा। नाग को नहीं देखो पर उसके मस्तक मणि को देखो, ये सिखाए, क्योंकि नाग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है मस्तक मणि। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया, इसकी अनुभूति कराने के बाद नारी नरक का द्वार नहीं पर नारी स्वर्ग का द्वार बन गई। इतना महान कर्तव्य इतना बड़ा परिवर्तन कोई मनुष्य नहीं कर सकता, देवात्मा नहीं कर सकता, धर्मात्मा नहीं कर सकता सिवाय परमात्मा। जब ही हमारे अंदर बाबा ने वो आत्म अभिमान भरा और दूसरों के अंदर उनको भी अनुभूति करा के उन्हें भी उस स्थिति में स्थित करना सिखाया, देह के बदले आत्मा को देखना सिखाया, तो आप ही विषय विकार जाते रहे। क्योंकि बाबा ने हमें यहाँ तक ही समझ नहीं दी, हमारा योगी जीवन बनने के पीछे ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। सन्यासी लोग जो हद का सन्यास करते घर बार छोड़ के भाग के जाते हैं। सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दिया, परंतु अगर आप उसके देखेंगे, उसकी लिखत देखेंगे, धोए देखेंगे, अंधा होने के बाद भी कहता है हे हरि, अभी ये जो भवसागर है इसमें काम रूपी मच्छ हमको जीने नहीं देता है। अरे आंखें नहीं होते हुए भी उसको काम विकार जीने नहीं देता, यहाँ तो खुली आंखों से एक दो से देखते हुए सब कार्य व्यवहार करते हुए इसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, ये कौन सी शक्ति। तो बाबा ने हमारे दृष्टिकोण को चेंज किया, आत्माभिमानी बनना सिखाया, जिससे हमारे अंदर वो शक्ति आ गई। अभी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता। जब ही नए आते हैं कोई भी 7 दिन का कोर्स करते हैं, उनको जब समझ में आ जाता है तो वो अपने जीवन को पवित्र बनाना चालू कर देते हैं। हमारा जीवन सदा ही पवित्र रहे उसके लिए बाबा ने हमारे आदि और अनादि संस्कारों की हमको स्मृति दिलाई कि तुम वही पूजनीय आत्माएं हो, तुम वही श्रेष्ठ आत्माएं हो जो तुम्हारी द्वापर से लेके पूजा हो रही। तो ये जैसी जैसी हमारी स्मृति बढ़ती गई उसके आधार पर हमारी समृद्धि बढ़ती गई, हमारे में शक्ति आती गई इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने। पवित्र जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, बाबा कहता तुम सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, तुम ब्रह्माचारी हो। ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मचारी एक विकार की बात हो गई, परंतु हम तो ब्रह्माचारी माना ब्रह्मा बाप का आचरण करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हम उसके बच्चे ब्राह्मण। तो जैसी बाबा की जीवन, बाबा ने हमें पुरुषार्थ का शॉर्टकट बताया है कि बच्चे ज्यादा गलियों में घूमने की धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सी फादर फॉलो फादर, किसी को भी नहीं देखो, सिर्फ बाबा को सामने रखो, ब्रह्मा बाप को साकार में, निराकार में शिव बाप को सामने रखो, साकार में ब्रह्मा बाप को सामने रखो और उसके कदम के ऊपर कदम रखना चालू कर दो। बाबा जो है हमारा सुप्रीम टीचर है। आज किसी भी स्कूल कॉलेजेस में टीचर जो है वो कभी अपने बच्चों को कॉपी नहीं करने देते हैं। कॉपी करते हुए पकड़ेंगे तो एग्जाम नहीं दे सकते, गेट आउट करते हैं। और हमारा टीचर इतना अच्छा है, वो कहता है तुमको सिर्फ कॉपी नहीं पर तुम्हें ब्रह्मा बाप की कॉपी बनना है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी कितनी इजी होती है आपको मालूम है ना। कॉपी करने में तो हमको अलग लिखना पड़ता है, पर कार्बन कॉपी में तो लकीरें ही मारनी पड़ती है जो है उसके ऊपर, और कुछ नहीं करना पड़ता। तो ऐसा जो हमारा रहम दिल टीचर है, हमारा बाप है, वो हमारा बाप पवित्रता का सागर है, पवित्र दुनिया स्थापन कर रहा है। ये बात बुद्धि में आने के बाद हम सभी ने क्या कर लिया, पान का बीड़ा उठाया, पवित्र बन औरों को पवित्र बनाएंगे। फिर कितना भी सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो अभी बात ये आई कि जो पवित्रता का लेसन नयों के लिए है क्या 15 बरस 20 बरस होने के बाद हमारी भी उतनी पवित्रता? क्या पवित्रता की यही लिमिट है? पवित्रता ये ब्राह्मण जीवन की शान है, पवित्रता ये ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है, पवित्रता जो है यही ब्राह्मण जीवन की ही सत्य पहचान। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया, ये जो पवित्रता है कर्मों की पवित्रता, ये तो ठीक, ये तो तुमने पार कर लिया। और सन्यासियों को भी चैलेंज कर दिया कि तुम जो नहीं कर सकते वो हमने करके बताया, तुम जिसके लिए घर बार छोड़ के भाग के चले गए हम घर गृहस्थ में रह के पवित्र बन के बताए। परंतु बाबा को यहाँ तक सिर्फ पवित्रता नहीं चाहिए। बाबा कहता है बच्चे, पवित्रता का मतलब है सत्यता, सच्चाई और सफाई, ये भी पवित्रता। 5 विकारों का अंश मात्र भी न रहे, पवित्र आत्मा बन के जाना है। पवित्र आत्मा ना, आत्मा माना क्या? सिर्फ काम विकार पर के ऊपर विजय प्राप्त किया तो पवित्र बन गए? नहीं, किसी भी विकार का अंश भी न रहे। अगर अंश भी रहा तो अंश से वंश बनने में देरी नहीं लगती। एक बारी बाबा ने इस बात को बड़ा अच्छा स्पष्ट किया, अव्यक्त बाबा ने, अगर पुराने संस्कार, पुराने विचार, क्या इसको प्यूरिटी कहेंगे? ये क्या है? जब तुमने जन्म बदली कर दिया, जब तुम्हारा जन्म चेंज हो गया, तुमने जन्म बदली कर दिया, तुम नए जन्म में आ गए, चेंज हो गया ना तुम्हारा सब कुछ, फिर चेंज होने के बाद सब कुछ चेंज होना चाहिए, तुम्हारे विचार, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे संस्कार सब चेंज हो जाने चाहिए। अगर उसका थोड़ा भी पुराने संस्कारों का कहां अंश भी रहता, विचारों का अंश भी रहता, तो वो किसकी मिल्कियत है? वो है रावण की मिल्कियत। आज किसी व्यक्ति से अगर तुम कर्जा लेते हो तो जिसका सामने वाले का कर्जा आप जब भी तक चुकता नहीं करेंगे वो आपको छोड़ने वाला नहीं, ये ध्यान में रखो। ये जो माया घड़ी घड़ी आके तुम्हारा दरवाजा ठोकती है, इसका कारण उसका कर्जा तुम्हारे पास है, उस कर्जे को रिटर्न करो उसको। वो तुमने अपने पास रख छोड़ा है, वो जब भी तक लेगी नहीं तभी तक छोड़े नहीं, छोड़ेगी नहीं, कहेगी हमारे को माया सता। अरे सताएगी क्यों नहीं, तुम उसका कर्जा लेके बैठे। तो प्यूरिटी का मतलब उसके द्वारा, माया के द्वारा हमारे अंदर जो भी विचार आए, जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, पुराने विचार हैं, उनका त्याग करना माना प्यूरिटी। मोटे मोटे विकार तो देखने में आते हैं, मोह छोड़ दिया। हाँ, माताओं को मोह छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, होती है नहीं होती है? हाथ ऊपर करो माताएं, जरा लज्जा नहीं करो, होती है ना तकलीफ? अभी क्या होता है, बाबा ने कहा मोह जीत बनो, क्योंकि लास्ट हमारा पेपर ये है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, वो सर्टिफिकेट लेना है आपको और हमको सब। इस देह में भी हमारा मोह नहीं, एकदम नष्ट मोह बनना। अभी क्या होता है, मोह नहीं रखते हम, परंतु हमारी माताएं है ना बड़ी मीठी है, फिर क्या होता है, पोतरा होता है, पोतरी, छोटे छोटे होते बच्चे, मीठे होते बड़े, उनको सिखा देते हैं शिव बाबा बोलो, शिव बाबा बोलो, तो बड़ी खुश होती है माताएं, ये सारा दिन शिव बाबा बोलता है। अभी वो बच्चा शिव बाबा बोलता है और हम उसको याद करते हैं, वो बाबा को याद करते हैं, हम बच्चे को याद करते। देखो होता है या नहीं होता है, आकर्षण होता है। तो ये आकर्षण क्या है, मोह है या नहीं? तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे को भी क्या करना है, देह और देह के जो सर्व संबंध है उनसे तुम्हें नष्टो मोहा बनना है। जब तक नष्टो मोहा नहीं है तो स्मृति लब्धा बन नहीं सकती। क्रोध छोड़ दिया, अच्छा रोग ये क्या है? संबंध, संबंध याद रहता है। बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई, देखो प्रवृत्ति में रह के, बच्चे तुम प्रवृत्ति में रहते हो, तुम नौकरी धंधा करते हो, परंतु सदैव ये याद रखो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते। ये बाबा ने युक्ति क्यों बताई? नहीं तो पुरुषों को नशा रहता है, मैं कमाता हूँ इसलिए तो चलता है। अरे पर ये नहीं समझता है, अगर वो नहीं देगा तो क्या कमाएगा? ये देखो कितना सूक्ष्म है, इसको आप इसको प्यूरिटी कहेंगे? ये क्या है? अगर मेरापन आया, मैंने किया, तो इसको क्या कह सकते? तो छोटी छोटी बातें हैं, ईर्ष्या है, वैर है, ये क्या है? ये इम्प्यूरिटी या प्यूरिटी? किसी के साथ विरोध है। बाबा हमेशा कहता था, बच्चे आपस में मत भिन्न होने चाहिए, क्योंकि हरेक आत्माएं अलग अलग है, पांच अंगुलियां एक जैसी नहीं होती है, हरेक की बुद्धि अपनी अपनी, मत भिन्नता भले होवे परंतु मत भेद कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी बात आवे, समझो घर में चार लोग रहते हैं, चार लोग जो भी रहते हैं तो मतभेद नहीं, हरेक का विचार तो अपना अपना होगा ना, सबके विचार अपने अपने, परंतु उसके कारण टकराव हुए, तुम्हारा मतभेद हमारे साथ नहीं मिलता, तुम्हारी मत हमारे साथ, ये नहीं होना चाहिए। टकराव ये भी क्या है? उससे तो आग पैदा होती है, तो आग क्या है? शीतलता तो नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे जैसी सत्यता है, सच्चाई और सफाई, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, असत्यता ये प्यूरिटी है। किसी किसी को झूठ बोलने की आदत होती है, बहुत आराम से झूठ बोलते हैं। उनको बोले आपने झूठ बोला? नहीं बोला नहीं, ऐसे निकल गया होगा। कहां से निकला? मेरे मुंह से निकला, कहां से निकला ये तो बताओ? मुंह से निकल गया तो मेरा मेरे मुंह पर कंट्रोल नहीं हुआ ना। परंतु उससे विक्रम बनते हैं, और छोटे छोटे विक्रम इकट्ठे होकर के उसकी गठड़ी बनती। पहले से हम 63 जन्मों के हिसाब किताब की गठड़ी लेकर के आए उतारने के लिए, और दूसरी ये छोटी छोटी भूलें करके अगर हम पाप कर्मों की गठड़ी को भरते जाएंगे तो आप बताओ फिर हमारा हाल क्या होगा? एक तरफ हम पुरानी गठड़ी को योग के बल से खलास करें, और दूसरी तरफ अलबेलेपन के कारण, अलबेलापन, अटेंशन नहीं अपने ऊपर, उसके कारण ये छोटे मोटे हमारे से अगर पाप होते रहे तो उससे क्या हो जाएगा? एक तरफ कमाई दूसरी तरफ गमाई, तो विश्व का कल्याण कभी करेंगे, खुद का कभी करेंगे? विश्व को पवित्र कभी बनाएंगे? कभी फुर्सत मिलेगी हमें? तो इसीलिए अपने ऊपर हमें फुल अटेंशन रखना है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए। योगी जो है उसमें स्वच्छता भी है, उसमें सत्यता भी होनी चाहिए, दोनों भी बातें होनी चाहिए। आप योगियों की कुटिया जाके देखो, स्थूल स्वच्छता भी चाहिए। आप योगियों की कुटिया देखेंगे ना, जहां भी मिलेगी आपको, कुछ भी नहीं होगा वहां पर, वो लेपा पोती करके रखा हुआ होगा उनको, पर सबको जाके वहां बैठेगी शांति मिली। स्वच्छता है ना, लोग तो स्वच्छता को ही भगवान कहते हैं, कहते वो ही भगवान। स्वच्छता खींचती है, ये स्थूल स्वच्छता, बाबा ने हमको वस्त्रों की भी स्वच्छता सिखाया। ऐसा नहीं तुम बहुत भड़क ये वो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, बहुत कीमती पहनो, नहीं, बाबा कहता था सिंपल पहनो परंतु धोया हुआ पहनो और फट गया तो उसको सिलाई करके पहनो, मैला कपड़ा नहीं पहनो, फटा हुआ नहीं पहनो, सिलाई करके पहनो। बाबा ने हम बच्चों को सब सिखाया, कैसा बोलो, कैसा चलो, क्या करो, तुम्हारी जीवन कैसी होनी चाहिए, पवित्र जीवन तो कितनी रायल होनी चाहिए। कभी कभी एक कोई कोई मम्मा के सामने आते, किसी किसी को आदत होती है ना, कोई तो चलेगी इतना धीरे आराम से चलते हैं, पैर का आवाज भी नहीं होता है, कोई चले ठप 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 ठप, पता नहीं क्या बे ये तबला बजाते क्या क्या करते, ऐसा आवाज कर करके चले, तो कोई ऐसा आवाज करके चलता था मम्मा उसको बोले इधर आओ, धरनी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या, वो बोले नहीं मम्मा हमने कुछ किया क्या, बेचारी वायरी हो जाएगी, हमने कुछ किया, हमने कुछ किया तो नहीं मम्मा, बोले इसको क्यों मार रही बेचारी को, देख मैंने मारा नहीं, बोला ये तुम इतना जो पैर ठाप ठाप करके उसके ऊपर रखती है उसको दर्द नहीं होता है, ये रॉयल्टी समझा, मम्मा रॉयल्टी सिखाती थी, प्यूरिटी ये रॉयल्टी सिखाती, मम्मा बोलती थी देखो देवताएं हैं, देवताएं कैसे चलते, देवताओं के कदमों का कभी आवाज नहीं आता, चले गए मालूम ही नहीं पड़ेगा ऐसा, क्योंकि पहले तो आत्माओं को बुलाते थे, देखते थे हम लोग कैसे लक्ष्मी नारायण कैसे फूलों के जैसा चल रहे, जैसा पैर लग ही नहीं रहे उनके नीचे ऐसे चल, और ये ठा 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 करके चार लोगों को मालूम पड़ेगा कोई चल रहा है, बोलेंगे तो जोर जोर से बोलेंगे, ये कौन सी रॉयल्टी है, धीरे बोलो, हंसो तो धीरे हंसो। मम्मा बोल कोई बहुत खा खा करके हंसता था ना, मम्मा बोलती थी ये देवी देवताओं को देखा है ऐसा हंसते हुए तुमने, देवी देवताएं देखो कैसे हंसते, सदा मुस्कुराते रहते हैं, सदा मम्मा भी सदा मुस्कुराते रहते, आवाज से नहीं कभी हंसते, आवाज से नहीं बोलो, ये इससे क्या होता है, हमारी जो शक्ति हो सेव होती, हमारी शक्ति वेस्ट होती है इसमें आध्यात्मिक, आप ऐसा नहीं समझना, वो हमारे पास सेव होती जाती है शक्ति जो हम विश्व कल्याण के लिए लगा सकते, भोजन भी खाओ बाबा की याद में खाओ, इधर उधर की बातें करते हुए ये वो अभी घरों में रहेगे, टीवी चलती रहेगी, खाते रहेंगे, देखते रहेंगे, क्या अन्न का मन पर क्या असर, सिर्फ ऐसा थोड़ी तुमने कांदा लहसुन नहीं खाए तो पवित्र भोजन हो गए, नहीं, विधि के प्रमाण खाओ, विधि से सिद्धि की प्राप्ति होती, तो जितना जितना बाबा ने हमें हर कर्म में बाबा की याद के द्वारा वो धीरज धीरजता रख के शीतलता रख के अपने जीवन को चलाओ, औरों को भी उसका फायदा हो, क्योंकि औरों के आगे आदर्श है, आदर्श है ना, देखो शुरू शुरू में जो हमारी इतनी दादियां आई, भाई भी थे, भाई थोड़े थे, मैंने माताएं ज्यादा थी, परंतु उन्होंने कैसा विजय प्राप्त किया मोह के ऊपर, सब विकारों के ऊपर, बाबा को देख के किया, जैसा बाबा ने किया जो किया वो उन्होंने किया, ब्रिजेंद्रा दादी देखो मोहजीत बनने का एक उदाहरण बताते, दादी का जो लौकिक भाई था ब्रिजेंद्रा दादी का, उसका बहुत मोह था बहन में, उसको बच्चा नहीं था समझो, यही उसकी बच्ची, और बहनों में भी था पर इसमें बहुत मोह था, तो ये जब ही बाबा के घर में गई, शादी करके दिया इसको, इसकी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री, तो बहुत कंडीशन रख के और ऐसा शादी करके दिया, परंतु रोज बहन को मिलने को आता था उसके ससुराल में, अति मोह था इसमें। तो अपना बताती थी, देखो कहा कि फिर क्या हुआ, फिर बाबा का अवतरण हुआ, ये सब कुछ हुआ, फिर भी वो आता था तो इसको अच्छा नहीं लगता था, ये क्यों आता है अभी, क्योंकि इसकी तो रग टूट गई, वो तो झूठा पड़ा था तो वो आता था। तो तभी तो बाहर इसमें क्या बोलते हैं अपना ये होता था, बंगले के बाहर पहरा देती थी ना बहने, तो जो भी आएगा वो अंदर नहीं आ सकता था परमिशन के बगैर, उनको परमिशन मिलती थी तो अंदर आता। तो बड़ा सेठ था, उनके दादा के नाम का बड़ा शहर था वहां, तो बोला ऐसा ही वो मिलने के लिए आया, तो हमारे को अच्छा नहीं लगा, हमने बोला उसको बोलो मैं नहीं मिलेगी, थोड़ा दिन आया उसके बाद बोला मैं नहीं मिलेगी उसको, बोल दो रोज रोज काहे को आता है, अभी वो दरवाजे पर आया और ये नहीं मिली तो उसको बड़ा धक्का लगा। तो वो सीधा वहां एक ये दूसरा बड़ा था आदमी पंचायत का बड़ा, उसके पास गया, उसके पास गया तो उसने बाबा को फोन किया, बाबा को फोन किया, बाबा को कहा बाबा ये बलिराम सेठ आया था, उनका लौकिक में नाम सती था, तो सती से मिलने के लिए आया था और उसने रिफ्यूज कर दिया, वो रो रहा बोला वो सेठ कि बहन मेरे से मिली नहीं, और बाबा को कुछ मालूम ही नहीं था ये सब कुछ हुआ। तो बाबा ने इसको बुलाया, बाबा ने कहा तुमने बलिराम को वापस किया क्या, तो बोला हाँ, बोला क्यों, बोला मेरे को उसमें से मोह की बांस आती है, मैं उससे नहीं मिलेगी, बोला परंतु वो आया तो तुम मिलो तो सही ना, मिलने में क्या है तुमको, बोला नहीं बाबा मैं नहीं मिलेगी, बहुत मिल लिया मैंने उससे, मेरे को किससे नहीं मिलना। तो वो बेचारा, फिर बाबा ने कहा नहीं उससे तो मिलना पड़ेगा, तो आज तो मिल जा फिर उसको मना कर देना, फिर उसको भेजा, उसको बोला तुम उधर खड़ा रहना बाहर नीचे उधर, मैं बालकनी में खड़ी रहती हूँ, वहां मेरे को देख के तू चला जा, उसको सिखाने के लिए। वो सामने खड़ा रहा, इसका दर्शन किया और चला गया, नहीं तो इसका भी उसमें अति मोह था। परंतु बाबा ने जो नष्ट मोह बनने का पाठ पक्का कराया, बोला मेरे को उसमें से बांस आती है, देहधारियों को देखने से क्या होने वाला। तो ये बाबा ने जैसा कि रगे, पुराना जो जन्म था, पुराने संबंध जो थे, उसकी रगे काट दिया। कि हमारा तो एक बाबा गीत तो गाते हैं ना, क्या गीत गाते सभी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा भी कोई कोई ऐसा ऐसा गाते क्या कभी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। तो अब ये बिचारी याद, एक बाबा ही हमारा संसार है, वास्तव में ये है पवित्र, बाबा के बिगर हमको कोई भी याद नहीं आवे, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कुछ भी याद नहीं आवे। आप ऐसा नहीं समझो या मोह या विकार ये सिर्फ व्यक्ति में होता है, चेतन में होता है, जड़ चीजों में भी अगर हमारी आसक्ति होती है। बाबा ने बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई कि किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखो, आसक्ति है तो माया आ सकती, माया को आने का चांस होता है, इसीलिए आसक्ति नहीं रखो। तो मम्मा कोई भी जब भी ब्रह्मा भोजन मम्मा खाती थी, मम्मा कभी भी रिमार्क नहीं देती थी, जैसा मिलेगा वैसा खा लेती, दूसरा खाएगा तो वो बोलेगा इसमें नमक ज्यादा, इसमें मिर्ची, मम्मा कभी नहीं बोलती थी, वो बोलती थी प्रसाद है, प्रभु प्रसाद करके खा, प्रभु प्रसाद करके खाएंगे तो मालूम ही नहीं पड़ता है ना। तो ये सिखाती थी मम्मा सब कि कैसा अनासक्त, इंद्रियों से न्यारा हूं, डिटैच हो इंद्रियों से। और अगर समझो हमारे को किसी भी चीज के अधीन है, समझा, किसी चीज के अगर अधीन है, वस्तु के अधीन है, वो अधीनता हमारे को नड़ती है, यहां तक भी हमारे को अटकाती है, शरीर छोड़ने के बाद भी वो हमारे को खींचती। मैं आपको मिसाल बताऊं, हमारे पास एक माता थी, अनन्य माता, क्लास की पुरानी यज्ञ माता। उसने शरीर छोड़ा, पहले शुरू शुरू में संदेशियों के तन में उन आत्माओं को बुलाते थे, जब भी भोग लगाते थे, जो पुराने हो गए उनको मालूम होगा। तो किसी ने देखा है, नहीं देखा है हाथ ऊपर करो, किसने देखा हो। तो पहले बुलाते थे उन, तो उसको बुलाया, ब्रह्मा भोजन उसको जो अच्छा लगता था सब बनाया, सब खाया उसने। संदेशी के तन में आई, मिली सबसे, और फिर जावे ही नहीं। तो सभी एक दो का मुंह देखे, जाती क्यों नहीं, ताकि उसको कौन बोले जाओ, अच्छा नहीं लगता है ना। तो ब्रिजेंद्र दादी ने उससे पूछा, कुछ कहना है क्या? तो हाथ ऐसा आगे किया, बोला सुपारी दो। उसको सुपारी खाने की आदत थी। अभी हमारे पास सुपारी, हम तो खाते नहीं, अब सुपारी कहां से होगी। तो बोला सुपारी दो। तो मेरे को दादी ने कहा कि अभी अपना जो सेंटर है ना एकदम बाजार के बीच में, तो दादी ने मेरे को बोला जब भाग नीचे वो पान वाला होगा उससे सुपारी दे क्या। मैं जाके उससे सुपारी लेके आई, इसको दिया, मुंह में डाली, फिर तभी गई। देखो आदत कितनी खराब है। ये ऐसी आदत है, हम समझते हैं देहधारियों से या चेतन से जो अटैचमेंट है वो अपवित्रता है, वो हमारे को योग लगाने नहीं देती। पर बाबा जो घड़ी घड़ी कहता है ना, कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं होना, वश में नहीं जाना। तो ये जो पुरानी आदतें हैं, पुरानी आदतें भी हमारे को हमारी जो रॉयल्टी है उस रॉयल्टी से नीचे लाती। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते थे, होवे तो ईद, नहीं होवे तो रोजा। है ना, मजा करो, नहीं होवे तो कोई बात नहीं, उसके लिए ये नहीं करो, तड़पो नहीं, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो इसीलिए हरेक को, हम योगियों को खुद को चेक करने की आवश्यकता है कि हमारी किसी में आसक्ति तो नहीं जाती है, हमारा किसी में मोह तो नहीं जाता है, हमारा किसी से हमारा वैर तो नहीं है, हमारा भय, हमको किसी से भय तो नहीं है। भय किसको होता है? भय उसको होता है जिसके अंदर वैर होता है। वैर भय को पैदा करता है। हमेशा देखो गायन करते परमात्मा का, निर्वैर निर्भय निर्वैर, उसका किसी से वैर नहीं, उसके लिए सब समान है। और आज एक मिनिस्टर जाता है, 50 उसके पीछे बॉडीगार्ड जाते हैं, क्यों? कारण वैर, भय है ना उन लोगों। तो उसी प्रकार ये भी सूक्ष्म विकार है सारे, जो तंग करते हैं, जो प्यूरिटी से दूर करते हैं। जो हमारे को कमाई नहीं करने देते। आज आप ये ध्यान में रखना, लगाव खराब है। अच्छा, लगाव खराब है तो नफरत अच्छी चीज है? लगाव जो है, अटैचमेंट जो है वो विकार है, माना इम्प्यूरिटी है। और जो नफरत है वो क्या है? जिसके साथ हमारे को नफरत होगी, जब भी हम योग में बैठेंगे वो भूत बन के हमारे आगे पीछे घूमेगा। जैसा अटैचमेंट वाला घूमेगा ना, वैसा नफरत वाला भी घूमेगा। इसीलिए ना किसी से नफरत करना, ना किसी से अटैचमेंट रख। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंची चोटी बताई है कि बच्चे तुम्हें कहाँ जाना है। अरे यहाँ तक जिस तन में भगवान आता है उसको ही नहीं याद करना है, तो औरों को क्या याद करेंगे तुम? कभी कभी बाबा के सामने बैठे होते, बाबा पूछता था किसको याद कर रहे, शिव बाबा, शिव बाबा को याद कर रहे, कहाँ याद कर रहे? हम बोले सामने याद, सामने क्या याद करते, ऊपर ही। अरे सामने बैठे तो ऊपर कैसे याद करे? नहीं नहीं, तुम बच्चों को ऊपर ही याद करना है। क्यों ऊपर याद करना है? क्योंकि तुमको ऊपर जाना है, प्रैक्टिस वही करनी। अभी सामने बाबा बैठा है और बोलेगा ऊपर याद करना। परीक्षा लेता था बच्चों, बाबा ने कभी भी अपना फोटो तक भी नहीं निकालने दिया। कभी कहते थे ना बाबा फोटो तो निकालने, क्या कर किसका फोटो निकालिए? शिव बाबा का निकाल है तेरे पास कैमरा? शिव बाबा का फोटो निकलेगा? नहीं शिव बाबा का नहीं, नहीं फिर किसका? इसका निकालेगी, फिर यही याद आएगा शिव बाबा, भूल जाएगा तू। मतलब बाबा इतना बच्चों को डिटैच कराता था इन बात कि कोई भी याद नहीं होवे, बस एक बाबा दूसरा नहीं। तो ये सब कुछ वो निराकार है, पर उसको करण करावन हर स्वामी कहते हैं। उसने सब कुछ आकर के हम बच्चों को कर्म करके ब्रह्मा के द्वारा सिखाया कि तुम्हें बनना है तो कैसा बनना है। ऐसा ही तुमको राजाई मिल जाएगी क्या? हाँ, ऊंच पद पाना होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, नहीं तो जो मिलेगा सो चलेगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे पासपोर्ट तो मिल गया है सब, हाँ बाबा का बनना माना पासपोर्ट मिलना। परंतु अगर हमको ऊंचा पद चाहिए तो उसके लिए अपने ऊपर हमें अटेंशन देना पड़ेगा, स्व परिवर्तन करना पड़ेगा हमें। हम जितना जितना अपने स्व की चेकिंग करते हैं उतना हम स्व का परिवर्तन कर सकते। स्व चेकिंग नहीं होगी तो स्व परिवर्तन भी नहीं होगा। इसीलिए सदैव अपने ऊपर ध्यान दो। हम औरों के आगे आदर्श है, जितने पुराने होते हैं उतनी जवाबदारी बढ़ती है। खुश होते हैं ना, हमको इतना बरस हो गया, चल के इतना बरस, ये तो वो लोग उसी माप से देखते हैं, अच्छा इतना बरस हो गया फिर इनकी अवस्था कैसी है। क्योंकि हमारे बहुत टीचर बैठे हैं इस दुनिया में, वहां तो एक बार ही एग्जाम होता है हाँ बरस में, यहाँ तो रोज एग्जाम है, हर घड़ी एग्जाम है हमारा। देखो बाबा भी हमको देखता रहता है, बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ ब्राह्मण भी देखते रहते हैं आपस में, खुद को कम देखते दूसरों को ज्यादा देखते हैं। ब्राह्मणों की ये आदत हो जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। बस ये क्या कर रहे, इसको इतना बरस हो गया ये क्या कर रहा है। पर जो तीव्र पुरुषार्थी हो किसी को नहीं देखता है, वो बाबा को देखते। लौकिक घर वाले वो भी यही देखते हैं, जरा भूल होने दो बोले अरे तुम ज्ञान में चलती है ना, खुद कुछ भी करते रहो समझा, परंतु तुमने अगर जरा भी कुछ किया तो बोले तुम तो ज्ञान में चलती, तुम क्यों ऐसा कर। वैसा भी देखो ऐसा ही होता है ना, दो बच्चे होते एक छोटा एक बड़ा है, अगर कोई भी भूल होती है तो कान किसका पकड़ते, बड़े का ही पकड़ते। तो उन बेचारों का तो ठीक है ना, सावधान करते भाई तुम तो ज्ञान में चलते इसीलिए तुम ऐसा कर्म नहीं कर सकते। तो वो भी हमारे गुरु हो गए, कितने गुरु है हमारे, दुनिया वाले भी हमारे गुरु हो गए, देखते रहते इनमें क्या परिवर्तन आया, ये कैसा चल रहे है क्या कर रहे है। तो इसीलिए हमारे को सभी बना करके देवता बनाने के लिए हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमको आखिर देवता बना के ही छोड़ेगी। पर उसके लिए क्या चाहिए, हमारा खुद के ऊपर अटेंशन चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हम जरूर जल्दी से जल्दी बाप समान बन जाएंगे और बाबा का हम शो कर सके। क्योंकि जब तक समान नहीं है तब तक समान होने के बिगड़ तो साथ भी नहीं जा सकते। जो समान होते हैं बैठते भी साथ में है, समान होगा वो ही साथ बैठेगा ना, समान होगा वो ही साथ में चलेगा ना। जोड़ी कौन सी अच्छी लगती है, जोड़ियां पहले देखते हैं तो ध्यान रखते हैं कौन सी जोड़ी अच्छी कौन सी लगेगी, वो जोड़ी देख के मिलाई जाती है। तो हम भी तो सब सज्जनियां है ना, तो हमारी भी जोड़ी ऐसी होनी चाहिए, तो हम भी उसके मन पसंद वो जो चाहता है वो जब करके बताते हैं तभी बाबा भी बच्चों को शाबाश देता है। बाकी आप लोगों ने प्रवृत्ति में रह करके अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाया है, इसीलिए आपको बाबा एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। ओम शांति।